فرمایا جو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے۔ پورے بارے میں لفظ اعمال بہت دفعہ آئے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ نوٹ کر لیجئے گا، انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے میں ایک بہت بڑا عمل ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب دینے یا پکڑنے کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے، اور اس میں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک، اس کو عقوق کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا لفظ حقوق، حق ہا سے، اور ہا کی جگہ عین لگا لیں، اس ماں باپ کی نافرمانی کو عقوق کل والدین کہتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، ہم ساری دنیا کے ساتھ اعلیٰ اخلاق والے ہوں اور ماں کے سامنے یوں گرائیں جیسے کہ کوئی جانور گراتا ہے، یوں گرجیں جیسے بادل، یوں کندھے اچکائیں کہ جیسے کوئی شانے بے نیازی کے ساتھ اچکاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارا وہ اخلاق اور ہمارا وہ کردار ہماری ساری نیکیوں کو کافی نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں کیوں کرو، خاص طور پہ یہاں ماں کی بات ہے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ کون سی عمر ہوتی ہے؟ یہ پیک جوانی کی ہوتی ہے، انسان کی ساری صلاحیتیں خوب اچھی ہوتی ہیں، اپنے اوپر رشک ہوتا ہے، عجب آنے لگتا ہے، فخر آنے لگتا ہے، پھٹ پڑتا ہے انسان، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ جیسا ہو تو سامنے آئے۔ اس وقت کیا کہتا ہے؟ اس جملے کو سنیے، اپنا محاسبہ کیجئے، کبھی پچھلی زندگی میں یا ریسنٹلی ابھی بھی انہی دنوں میں اگر یہ جملے بولتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ کیا؟ رب اودینی ان اشکر نعمتک اللتی انمت علیہ وعلی والدی ون عمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں۔ یہ خوبصورت دعا ہے کہ جس میں ایک ہی دعا کے اندر ماں باپ اور اولاد دونوں کے لیے دعا ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں آپ کو ایسی کئی دعائیں ملیں گی جو الگ الگ ماں باپ کے لیے یا اولاد کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن یہ دعا شکر گزاری کے جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں 40 سال کی بات آئی ہے، تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ خاص طور پہ 40 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں واقعی پھر بندہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں جو ہوا ہوتی ہے دماغ میں بھری ہوئی وہ سب نکل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے بہترین اعمال کو اللہ قبول کرتے ہیں، یعنی اعمال کے حبت سے ان کو بچا لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا انسان کی دعاؤں کا پر ہوتا ہے، انسان کے اعمال کے پر ہوتے ہیں اولاد ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ آپ نیکیاں کرتے ہیں نا، وہ آپ کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں کونوں میں کھدروں میں رہتی ہیں۔ پھر جب آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں نا، تو پھر ان نیکیوں کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں۔ کئی واقعات، کئی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ ایک موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب جو کیا تھا اس کا اقرار کیا، یعنی ماضی میں اسے کوئی بہت بڑا گناہ ہو چکا تھا، اب گلٹ محسوس ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ زندہ ہے۔ کہا جا پھر اس کے ساتھ نیکی کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر دل میں گناہوں کا گلٹ ہے، اگر اپنی جان پہ اپنی روح پہ کوئی گناہ کا بوجھ لاتا ہوا ہے، تو اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا ماں ہے؟ کہا خالہ ہے۔ کہا خالہ تو ہے۔ کہا جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو، گلٹ دور ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ماں باپ کے آپ نرم جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، تو آپ کا دل بھی اس کے ساتھ پگھلنے لگتا ہے۔ ماں باپ کے جسم کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس سے جوان اولاد کا خون پگھلنا چاہیے، گرم ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ، سرد مہری نہیں ہونی چاہیے ماں باپ کے لیے، ان کے لیے دل کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، ऐसे लोगों के फिर आमाल कबूल होंगे। थोड़ी नेकी करे कोई, लेकिन अपने माँ बाप के साथ, औलाद के साथ अच्छा मामला करे, अल्लाह आमाल को कबूल करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने वाला बनाए, और अगर कहीं पीछे कोई हमने कमी की तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता है, लेकिन इसके बरक्स ये है एक वो बदबخت शख्स कि जिसके आमाल जाया होने वाले हैं। उसके सर पे एक बड़ा पटारा क्यों ना हो आमाल का, टोकरा भर भर के उसने नेकियां क्यों ना की हो, लेकिन जिस शख्स ने अपने वालदेन से कहा तंग कर दिया तुमने मुझको, लफ्ज देखिएगा, अल्लाह ने वही जुमला लफ्ज इस्तेमाल किया जिस लफ्ज के बोलने से सूरत बनी इसराइल में मना किया था कि वला तकुल लहुमा उफ। और उफ लफ्ज सबसे हल्का लफ्ज है किसी चीज की नागवारी के एहसास के लिए। आप कहते उफ बड़ी गर्मी है, उफ बड़ी सर्दी है, उफ बड़ी स्मेल आ रही है, यानी नागवारी के इजहार में खुद से खुद मुंह से निकल जाता है ये लफ्ज। कहा माँ बाप के मामले में ये भी ना बोलो, इससे बड़ा फिर कैसे बोलेंगे, फिर गरजेंगे कैसे और पर उनको आंखें कैसे दिखाएंगे। लेकिन ये बदकिस्मत शख्स था, कहने लगा उफ तंग कर दिया तुमने मुझको, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर गईं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। क्या लग रहा है भला, औलाद ऐसी बदतमीजी कब करती है, जब माँ बाप उनको नेकी का हुक्म देते हैं, आखिरत का खौफ दिलाते हैं, मौत से डराते हैं, कोई नमाज रोजे को कहते हैं तो आगे से कहते हैं क्या मुसीबत है तुम्हारी, क्या तुम समझो मर के जिंदा करूंगा। आप देखिए कि अक्सर औलादें जो है ना माँ बाप के साथ बड़ी अच्छी होंगी, जो ही वो उसको नेकी बदी की बात बताएंगे किसी बुरे काम, क्या तुम समझो मर के जिंदा करूंगा, अकड़ते हैं। हम अपने आप से पूछे ना कि हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत, हम कहेंगे जी बहुत ज्यादा, ये आम हालात की बात है। और पूछिए जब माँ मना करे किसी बात पे, कहीं जाने से मना करे, कुछ देखने से मना करे, आपने और मैंने अगर अपनी मोहब्बत अपने माँ बाप से देखनी है ना, तो उस वक्त देखें कि जब वो मुझे किसी चीज से मना करते हैं या मुझे उनकी कोई बात बुरी लगती है तो मेरा उनके साथ बिहेवियर क्या होता है। देखिए जो हम आम हालात में कहते हैं ना माँ बाप से मोहब्बत है, ये तो फितरत का तकाजा है। जानवर का बच्चा भी माँ उसके हाथ चूमता है, उसको प्यार करता है, उसको चाटता है, अपना आप छोटा बच्चा देखे माँ को कितना चिपकता है, ये तो फितरत के तार हैं जो बंधे हुए हैं मोहब्बत के नाम पे। और जब बंदा दूर होता है फिर तो बहुत ही प्यार आता है, और जब ये नहीं रहते तो फिर तो आंसुओं की सूरत में रोता है उनकी मोहब्बत में। असल मोहब्बत का मेयार नोट कर ले अपने लिए, जब माँ बाप किसी बात से मना करें, जब उनको कुछ और पसंद है और मुझे कुछ और पसंद है, उनकी इज्जत किसी और चीज में और मेरी इज्जत किसी और चीज में बन गई, उनकी चाहत कोई और है और मेरी चाहत और है। आप देखिए कि माँ बाप का दिल तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे खूब नरम बिल्कुल पके हुए फल की तरह होता है। कभी आपने कोई ऐसा वो क्या होता है आलू बुखारा देखा होगा, कोई ऐसी चीज जो बहुत पकी हुई है, बस हाथ लगाते हैं ना तो वो ऐसे जाता है कि उसके अंदर से शीरा निकलता है। याद रखे माँ और बाप के दिल में हमारे लिए इतनी मोहब्बत होती है कि वो हमारे हल्के से हाथ भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। लेकिन जिस औलाद ने अपने माँ बाप को मजबूर किया, बोझ डाला, उनकी मोहब्बत में वो किसी ऐसे फैसले पे मजबूर हो गए जिसको उनका दिल नहीं चाहता, जिंदगी के किसी मौके पे इंसान को कम से कम रियलाइजेशन जरूर होगी कि काश मैं उस वक्त ये ना करता। लेकिन अब गया वक्त कहाँ गया, आज इन नगीनों की कदर कर ले। जो बंदा जिस तरह अल्लाह के हाथों में अपने आप को देता है ना, इस तरह अपने माँ बाप के हाथों में अपने आप को देखे देखे। एक कॉल याद आ गया, वैसे माँ बाप के लिए नहीं है लेकिन बात कुछ मिलती जुलती है। कहा कि जिसने मुझे एक लफ्ज सिखा दिया अब मैं उसका गुलाम हो गया, मुझे जिस बाजार में जाके चाहे बेच दे। ये किसकी बात है, ये रूहानी माँ बाप की बात है, उस्तादों की बात है। आज हमारे कंधे कैसे उचकते हैं, हम जरा चार लफ्ज बोलने लगे हम कहते हैं उस्तादों की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो उनको, उनको पीछे डाल दो। और माँ बाप के साथ तो औलादों के मामले यही है, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने तोड़ तोड़ के लुकमे मुंह में डाले, जिन्होंने हमारे नाक साफ किए। कर सकते हैं आप किसी का नाक साफ, आप किसी की पोटी साफ कर सकते हैं, आप किसी के पैम्पर बदल सकते हैं गंदगी वाले, हम क्यों भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। हम कहते हैं हम इतने बड़े पैदा हो गए थे, क्या किया आपने हमारे लिए। अल्लाह कहते इतनी बदबख्त औलाद अपनी नेकियों को जाया करवाने वाली। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं अरे बदनसीब मान जा। अल्लाह का वादा सच्चा है। तड़प महसूस करें माँ बापों की, आज औलादें क्यों रुलाती हैं माँ बाप को, आज क्यों माँ बाप की बातें उनको अच्छी नहीं लगती, क्यों अपने आप को अक्लमंद समझने लगती हैं, क्यों अपने जज्बात की जवलानी और अपने जोश व खरोश को वो अक्लमंदी समझने लगती हैं, क्यों अपने आप को खुद मुख्तार समझ के इन बूढ़ों को रुलाती हैं। हमारे सामने जो हंसते हैं ना, वो बुढ़ापे अकेले में रोते हैं, जो हमारे आंसू पोंछते हैं ना, वो तन्हाई में खुद हमारी उस हालत पे रोते हैं। जिसको कदर करनी है अपने माँ बाप की, कदर कर ले, इतनी कदर अल्लाह आपकी करवाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी औलाद हो ना हो, अल्लाह आपकी कदर करवा देगा। अगर दिल में कोई बोझ लिया हुआ ना, यहाँ बैठे बैठे नियत करें कि मैंने आज ही अपने माँ बाप को किसी तरह फोन करना है, ईमेल करना है, बात करनी है, लेकिन मैंने उनको कहना है कि मुझे माफ कर दें, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। आपको दीन पसंद है, मैं अल्लाह का दीन करूंगी। आपको मेरी जॉब नहीं पसंद, मैं नहीं करूंगी। जो जिंदगी के मामलात हो सकते हैं उसको सामने रख के अपने माँ बाप के पाँव के नीचे हाथ रखें। मैं अपने उस्ताद को ये बात अक्सर कहती हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए भी यही सोचती हूँ। मैं तसव्वुर में लाती हूँ कि मैं कहीं खड़ी हूँ और मेरे उस्ताद या मेरे माँ बाप आ रहे हैं और मेरे हाथ ज़मीन पे हैं और उनके कदम मेरे हाथों पे गिर रहे हैं। मैं उनको ज़मीन पे ना रखने दूँ। कमियाँ कोताहियाँ इंसान बहुत करता है, तबीयतों का फ़र्क हो सकता है, मिजाज का फ़र्क हो सकता है, माँ बाप से बच्चों की नहीं बन सकती, हकीकत है, नो प्रॉब्लम, मैं इस चीज़ को पूरी तरह एडमिट करती हूँ। माँ बाप भोले भाले होते हैं, औलाद समझदार होती है, माँ बाप में कोई कमी हो सकती है, खामी हो सकती है, वो बहुत बोलते हैं, वो बहुत बेमौका बातें करते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, लेकिन ये हक नहीं पहुंचता कि उफ़ तुम पे उफ़, तुम अफसोस, तुम ऐसे। अगर माँ बाप की कोई बात ना भी पसंद आए तो उस वक्त भी अल्लाह ताला के सामने जाके झुक जाए कि अल्लाह मेरे और इनके दिलों में मुवाफ़क़त पैदा कर दे। लेकिन ऐसा बदबख्त, अगर वो कहता है ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानी है, ये आज का दौर थोड़ी है। आजकल कॉन्फिडेंट औलादे हैं, आजकल इंडिपेंडेंट हैं, आज खुद कमाती हैं, खाती हैं, उनकी अपनी गाड़ी है, उनका सेलफोन है, आजकल क्या जरूरत है इन माँ बाप की। आप देखिए कि पहले जवान लोग माँ बाप के बहुत डिपेंडेंट होते थे। जब तक एक बंदा अपने घर में नहीं चला जाता था, माँ बाप के हाथों में देखना ही पड़ता था। आज के दौर में जब इंडिपेंडेंसी होगी, हाथों में सेलफोन आ गए जिसमें 10 दोस्तों के फोन नंबर लगे हुए, किसके पास इतनी फुर्सत है कि माँ के साथ बैठ के उसका दुख सुख सुने। आज हमने खुद अपने हाथों से, जिसको कहना चाहिए कि लोहे के और शीशे के टुकड़े खरीद के दे दिए अपनी औलादों को, और उन्हीं से वो अपने हाथ जख्मी करते हैं और हम रोते हैं। माँ बाप के भी दिल इतना नरम नहीं होना चाहिए औलाद के लिए। अच्छे बुरे का फर्क बताइए। आज ये जो गलतियां कर रहे हैं, कल ये भुगतेंगे, फिर आपको ही दुख होगा। इसलिए इसके ऊपर बहुत जरूरत है। आमाल के खप्त में जैसे शिर्क अल्लाह के साथ है, खालिक के मामले में हक तलफी इंसान के अमाल को जाया करती है ना, इसी तरह मखलूक में माँ बाप के साथ इंसान की कमी बेशी उसके नेकियों को जाया करती है। यहाँ बैठ के दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने आज तक अपने माँ और बाप को जब जहाँ जानते बूझते अनजाने में किसी वजह से तू जानता है अगर सताया है तो हमें माफ कर दे, और उनको भी तौफीक दे हमें माफ कर दे। और अगर उस सताने की वजह से हम किसी मुश्किल का शिकार हैं या किसी नेकी से महरूम है, किसी नेमत से महरूम है, तो अल्लाह तू अब उस उजर को दूर करके हमें नेकियों में बढ़ा और गुनाहों से पाक रख दे।